Come on. वो आगा कहीं से, इसलिए भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं हो सके चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य से भगवत्ता का विचार मत करो। जो ये भगवान है ये सबसे बड़े हैं, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और ये जो कुछ चाहेंगे मन से वो कर देंगे वो हो जाएगा। अब सौ से कोटि कोटि ब्रह्मांड का एक कहेंगे सृष्टि कर देंगे और ब्रह्मा ऐसे जैसे लोग उनकी ये पहले जो भगवत्ता का विचार था कब से
सत्युग के प्रारंभ में
सत्यु के प्रारंभ की बात जब सृष्टि आरंभ हुई उसको उन्हें किसकी उपासना की
उनके सामने कौन आया नारद जी भी हुए।
नारद जी ने किसकी उपासना की
भगवती
यही किया। प्रहलाद महाराज ने वो भी सत्युग है वो किसकी उपासना की नारायण और नृसिंह एक ही पत्थर ऐश्वर्य
सर्वशक्ति लगता है
इसलिए लोगों ने देखा कि इनमें सब शक्ति नहीं था
इसलिए साधारण लोग किसकी पूजा करता है
जिसे बोलने की शैली है
धनि है
विज्ञान है
जैसे कुछ शक्ति सामर्थ है लोग उसकी पूजा करते हैं वही उसका नेता हो जाता है
चमत्कार का नमस्कार
गांधी जी का ऐश्वर्य की अपेक्षा प्रेम का भाव ऐश्वर्य पर नहीं
गए
एक अत्यंत गरीब आदमी भी उनको
देखकर के सब कुछ आएगा नहीं यदि नहीं पहचानता है तो उनके साथ में बढ़िया जहर करके बैठे
ऐसा हुआ था।
और जवाहरलाल इत्यादि जो थे
उनके साथ उनको अधिक लोग पूजा करेंगे साधारण में और जब विचारवान आदमी होगा तो क्या करेगा वो माधुर्य
महाप्रभु जी ने ये विचार किया भगवत्ता का विचार किसने को जिसमें प्रेम है माधुर्य है
नारायण
प्रेम के वशीभूत होकर के
अपने सिंहासन से उठ करके कोई भक्त आ रहा है
तोड़ करके उसे गले से नहीं मिलेंगे
किसी को मैया मैयारी मुझे माधुर्य ये नहीं कहेंगे
नारायण नहीं कहेंगे कि मुझको भूख लगी है
नारायण को यदि कोई कहे जगत की जो मैं आपकी
प्रेयसी बन करके आपकी स्त्री बन करके आपकी सेवा कर रहा कोई भक्त चाहे जैसे प्रभु हे नारायण मैं आपका सखा होगा
तो नारद जी जैसा सखा बन जाओ नारद जी कैसे नारद जी वहां पर
भक्त खड़े होकर के कहेंगे प्रभु आप लगी की बातें हो जाती है वैसे यही
कर वो जो आलिंगन करना परस्पर में मिलना और हृदय की बात को खोलना उनकी चीजों को खाना
मुझे बड़ी भूख लगी थी नारद तुम ले आया बस लेकर के निकाल करके ये सब तो ये मधुर की दृष्टि कृष्ण में ही है और किसी भी भगवत तत्व में नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भगवत्ता का विचार करो ये श्रेष्ठ भगवान कौन है सबके मूल कौन है जिसमें अधिक प्रेम और माधुर्य है वो कृष्ण में दोनों चीजें हैं ऐश्वर्य भी है चरम भी और साथ साथ में
माधुर्य भी चरम
ब्रह्मा जी को दिखलाया कृष्ण ने गैया बछड़ा हरण के समय में अंत समय में दिखलाया जितने भी बच्चे थे वहां और जितने भी बछड़े हैं चतुर्भुज बन गए नारायण बन गए इसके बाद ये पेड़ पौधे लौटा जितने हैं ये सभी बछड़े बन गए और सब लोग इनकी स्तव स्तुति और पूजा कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों को देखा थोड़ी देर के बाद में बंद करके और फिर जब आंख खुला कर देखा
घूम रहे हैं
और वैसे ही मुख सुखा हुआ है कृष्ण का और देखो ये बछड़े किधर सखा किधर गए मुख सूख गए हैं प्यास लगी है चेहरे पर धूल जम गई है बस उनके चरण में एक साथ में देखा क्या ऐश्वर्य देखा कुछ कुछ विश्व ब्रह्मांड को वैसा एकदम रूप देखा और साथ ही साथ में देखा क्या
मैं
बचा हमारे बछड़े किधर गए दोनों एक साथ। महात्म जी ने कहा भगवत्ता का सार माधुर्य है, प्रेम है। यहाँ पर प्रेम, प्रेम का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम से जो ऊंचा वाला है वो भी झुक जाता है और नीचा वाला है वो बढ़ करके उसके पास में बराबर समानांतर रूप में खड़ा हो जाता है। ये प्रेम का उसमें छोटा बड़ा का ये सब भाव नहीं होता, बल्कि बड़ा का छोटा होना ही यही माधुर्य है। कृष्ण भगवान होते हुए भी, नारायण के भी अंशी होते हुए और एक सखा के गले से लगते हैं और सिद्धांत से हार करके हिचकिचाते हुए हंस रहे हैं और वो स्थालन कर रहा है, तुमने कभी जीता हमको, हमने तुमको कितनी बार जीता, अरे तुमने कब जीता, तो तुम्हारे कंधे नहीं कह रहे हैं, रगड़ नहीं है, यहाँ पर बैठते बैठते बतलाओ तो। और उसे हंसने लगी था और सब सखा लोग हंस रहे और गोपियों के यहाँ तो वो कैसे हो जाते हैं, यशोदा जी के यहाँ कैसे हो जाते। ये जो प्रेम की माधुरी है और किसी उनको जिस रूप में भी भजन करना चाहो भजन कर सकते हैं, किसी रूप में भी, मर्यादा से करो, अमर ज्यादा से करो, जैसे करो, उनके पास में जो कुछ कोई भी वासना लेकर के पहुंचाया सबको शत्रु भाव से उनके पास में भी गया तो भी उसको मुक्ति दे। उसे कृष्ण से संबंध होना चाहिए, क्रोध से हो, भय से हो, देश से हो, काम से हो, काम मन जगत में जो कामना वासनाएं जो होती हैं ना, इसके द्वारा भी यदि अत्यंत गर्हित चीज है, खराब चीज है, काम कामुक, ये भी लेकर के कृष्ण के प्रति यदि कोई पहुंचे, स्नेह से कोई पहुंचे, भक्ति के द्वारा यदि पहुंचे, सभी भगवान को कृष्ण को ऐसा ये भक्त है। अब इसको हम पाएंगे कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस पर विचार करते हुए ये श्लोक के ऊपर में लिया है भक्त के सामने सिंधु का, और इस पर एक एक स्तर के जो आठ या नौ सीढ़ियां, दस सीढ़ियां हैं, ये एक एक सीढ़ी का विचार करेंगे। यदि इनको अच्छी तरह से समझ जाए तो विचार कर सकता है कि हमारी भक्ति शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, हम कितने पानी में हैं, इसमें कितना पानी और कितना दूध है, ये सब आदमी एकदम बैरोमीटर जैसा वो है। इस चीज को पढ़ने से, समझने से आदमी अपने आप समझता है। इसलिए हम लोग किसी की भक्ति देखते हैं जिसको जगत प्रशंसा कर रहा है और हम लोग उसके लिए आए जिसके लिए संसार सब कहता है, भाई ये भक्ति की एकदम चुका है, सब लोग आते हैं और हम लोग कहते हैं कि हाय इसका जीवन क्या होगा, उलझ गया, बीच में जा रहा था शुद्ध भक्ति की धारा में और अटक गया। क्यों? ये पैरामीटर है। लोग तो ज्योतिष से ये हाथ की रेखा टेखा देकर के कहेंगे, हम लोग रेखा फेखा देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख लेंगे बस इनको कोई इंजीनियर फिंजीनियर की अधिक जरूरत नहीं इलेक्ट्रिकल जैंट ये लोग हैं, तो ये भक्ति के संबंध में ये सब चीज, इसको थोड़ा सा समझने पर अपने आप समझ लेंगे इसकी क्रिया में भक्ति है कि नहीं, इसकी ये जो भक्ति कर रहा है, फूल दे रहा है ठाकुर जी के चरणों में और इतना बड़ा बड़ा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, असल में भक्ति है कि नहीं, या भक्ति है तो कैसे इसकी भक्ति है, सगुण भक्ति है कि भक्ति देखावटी है कि शुद्ध भक्ति है। एक आदमी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा, बल्कि कहते हमारे सामने कृष्ण का नाम मत लेना, गोपियों ने उनका नाम रखा क्या जानते हैं क्या? कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते उसका नाम हम नहीं लेंगे, नहीं चोर तो कर, औसित कहेंगे, शीत माने होता है काला, औसित माने क्या?
शीत माने सादा,
हाँ औसित माने सादा, नहीं
शीत माने सादा, औसित माने क्या? सादा नहीं,
काला,
सफेद नहीं है,
तो औसित माने होता है काला,
जो सफेद नहीं है,
जो सफेद नहीं है, इसलिए काला ये नहीं कहा, काला कहने से हमारा
पिता
आ जाएगा,
काला का भी नाम आ जाएगा,
काला
याद आ जाएगा,
नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, कृष्ण को कृष्ण नहीं कहेंगे, काला भी नहीं कहेंगे, काला होने से तो कृष्ण आ गया, ये भी नहीं कहेंगे। बहुत दूर से जो काला नहीं है उसको कहते हैं सफेद, तो जो सफेद नहीं है ये कहेंगे,
असित
लाल नील हरा के हो सकता
है,
इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लेते। कहते नहीं उसे हमारा कोई जरूरत नहीं, उसे कोई तुलना में हमारा हो नहीं सकता। बताइए इसमें ऊपर से दिखता है जो भक्ति है, जो कृष्ण का नाम लेना नहीं चाहता है, अरे नहीं नहीं उसे कोई जरूरत नहीं, तो भग जा कृष्ण का नाम लेकर के आए। अब देखिए भक्ति के एकदम एकदम इसको कौन समझेगा, कौन समझेगा, बड़ा कठिन। इसलिए भक्ति के रहस्य के तत्वों को समझना बड़ा भारी कठिन है। परम सौभाग्य मान लो बहुत दिनों तक ऐसे व्यक्ति की यदि सेवा करें तो वो जो भक्ति की वासना, सेवा करने की वासना है कृष्ण की, शुद्ध रूप में उसके हृदय में आएगी। अब तब फिर उसके लिए चेष्टा करेगा, नहीं तो चेष्टा क्या करेगा, ठीक होगा। इससे पहले वो वासना आनी चाहिए, वासना में ठीक होनी चाहिए हमारी कौन सी वासना है, एक पोस्ट वहां पर लगाएगा, ये हमारा उद्देश्य है जीवन का, इसको हमको करना है। लोग देख रहे हैं कि फूल दे रहे हैं, ठाकुर जी को माला पहना रहे हैं, ये विचार किया जैसे कि इस माला को हम अभी देंगे शाम को तो इनको गले में लग करके ठंड लगेगी, ये विचार किया, विचार तक किया अपनी दृष्टि से, ये माला देना उनको सम्मान देना है, ये तो ठीक है यहाँ तक, और वहां तक वो भक्ति है। किंतु जो और भी जो भक्त है वो क्या विचार करेंगे, इस चीज को देने से इनको सुख होगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, इस पर तो विचार नहीं किया। इसलिए ये विचार भक्ति के ऊपर में विचार करना है प्रत्येक स्तर पर, तब वो समझ सकेगा कि जो मैं कर रहा हूँ कैसी भक्ति कर रहा हूँ, कितना भक्ति कर रहा हूँ, और ये व्यक्ति जो कर रहा है ये जो है ये भक्ति है कि नहीं है, तब वो विचार। और नहीं तो जिस स्टैंडर्ड में है वो, जिस लेवल पे है उसी को कहेगा जो हम सबसे बड़े भक्तिमान है, और वैसा ही किसी को देखेगा कहा ये सबसे बड़ा भक्त है। भक्ति के अंतर की चीजों को वो पकड़ नहीं सके, जो कृष्ण की सेवा जो भक्ति है। इसके लिए ये श्लोक सपला रहे हैं। कितना हुआ,
50 मिनट,
पता नहीं
आज मुख बंद ही समझ नहीं
में।
अब थोड़ा सा इसमें हम आरंभ कर देते हैं,
40 मिनट
कि आज तक
40 मिनट
महाप्रभु से पहले जितने लोग थे जो कि भगवान का भजन भी करते हैं, शुद्ध रूप से भी करते हैं, तो ऐश्वर्य को देख करके और उसी को भगवत्ता मान करके, जहां पर उसकी अंतिम बिंदु है ऐश्वर्य की, उसे बढ़कर के ऐश्वर्य नहीं है, बस उनको भगवान का ऐश्वर्यमय, भगवान को पाने के लिए जो साधन होगा वो भी ऐश्वर्यमय होगा, ये भी समझिए। एक धनी आदमी को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज चाहिए, वैसी चीज चाहिए ना। और जो व्यक्ति एकदम गरीब आदमी है उसको प्रसन्न करने के लिए मीठी बात, एक पानी दे दो, एक कुछ जुड़ जाएगा, उससे प्रसन्न हो जाएगा। किंतु बहुत धनी आदमी है, बहुत धनी आदमी, उसको उसी प्रकार से रिसेप्शन देना होगा
जो जैसे उसका स्टैंडर्ड।
तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर ध्रुव जैसी तपस्या, प्रहलाद महाराज की तपस्या, कठोर वैराग्य, ये सब जो संसार में हो नहीं सकता, ऐसा यदि कोई करे 10,000 वर्ष 88,000 वर्ष तक बिना खाए पिए रहो और भगवान का मंत्र जपो ऐसे बैठकर संसार को त्याग करके, तब तो उनको पाएगा। जैसे नारद जी ने कितनी 1,000 वर्ष तपस्या की,
ध्रुव महाराज थोड़ी सी
6 महीना किंतु देखो कि खाया नहीं, पानी नहीं पिया, हवा नहीं लिया, ऐसा करो तो 1 मिनट
बच्चे भी थे ना,
उम्र भी देखिए
छोटी उम्र से प्रश्न नहीं है। हम 5 मिनट 1 मिनट हम सांस नहीं, हमने कल परसों हमने देखा घड़ी हाथ में थी, हमने देखा जिसे मैं एक सांस कितना रोक सकता हूँ, तो मैं देखा वो कांटा सेकंड का भी चल रहा है, तो कांटे में देख करके देखा और सांस रोक लिया, तो देखा जबकि 30 पर आया सेकंड तो दम फूलने लगा, आया तब तो धड़फड़ करने लगा, कभी जोर से रुका रहा, जब 60 किसी प्रकार से 60 पूरा किया तो उस समय छटपट अब रहा नहीं गया। तो 1 मिनट भी हम लोगों का ये नहीं रहता। अब बताओ जैसे उन्होंने 1 महीने या 2 महीना अंतिम वाला सांस पे नहीं रोका,
लिया नहीं सांस,
लिया नहीं सर
सांस, एकदम रोक दिया, प्राणवायु को रोक दिया, पानी की तो बात ही नहीं, हवा तक नहीं दिया, और समाधिस्थ हो गए। देखने में मालूम होता है जब कम समय, कितनी कठोर चीज है
जो आज का व्यक्ति हम कहते हैं हजारों वर्षों में नहीं जिए,
ये स्वयं ने ये किया था।
कोमा की तरह नहीं होगा हमारे, कोमा जैसे कोमा में चले जाते हैं,
कोमा
जैसे आजकल डॉक्टरी से कोमा में चले गए एक महीने,
समय वो क्या करे, कहा ये उसमें भीतर में भक्ति की क्रिया है,
क्रिया चल रही है,
वो क्रिया खूब जोर से चल रही है, इसलिए वो भूल गए,
वो दर्शन देखने अंदर और सांस लेना भूल गए।
तो इसलिए इतनी कठोर तपस्या, वसुदेव और देवती जी ने कश्यप और अदिति के रूप में 7000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान का मंत्र जप रहे हैं और अंगूठा ऐसे नीचे लगा दिया,
हाथ का
ऐसे, और उसके ऊपर में पैर खड़ा कर दिया, ऊपर
उल्टे हो गए,
उल्टे
उल्टे
दोनों, और 7000 वर्ष तक
पति पत्नी
दोनों, देवताओं के मन से 7000
है,
देवताओं के मन से 7000
तो इतना दिन तक कपनी करता हूँ। तब तो ऐसे आजकल जितने नारायण उनके बेटे होकर के आए, वो भी सेवा दिया नहीं, और उनको चतुर्भुज के रूप में उनको दर्शन दिया का जाचा, अब हमारे समान तो कोई है नहीं, मैं तुम्हारा बेटा होकर के। तो ये देखो कितनी तपस्या, ये ऐश्वर्य युक्त भगवान को पाने के लिए ऐश्वर्य युक्त कठिन कठोर तपस्या करें, उस समय भगवान महाप्रभु जी आए, भागवत का उदाहरण लेकर के बोले ये भाई ये मत करो, सब कलयुग में संभव नहीं, बस तुम लोग नाम का आधार लो और कृष्ण को अपना बेटा मान लो, कृष्ण को अपना सखा मान लो, कृष्ण को कि अपनी बन जाओ प्रेयसी, उनको अपना प्रेमी मान लो, अपना प्रियतम उनको मान लो, और उनको खिलाओ पिलाओ लाड़ प्यार करके यही साधन करो, अपना घर का उनको बना दो। इस प्रेम के द्वारा जितना सहज रूप में मिलेंगे और जो मिलेंगे वो ऐश्वर्य के द्वारा, इन लोगों को जो नारद जी प्रहलाद को, नारद जी को और सबको भी मिले, उससे कुटी गुण ऊपर वाले वो कृष्ण मिल जाएंगे, तुमको ब्रज का प्रेम मिलेगा। इसलिए उन्होंने हरिनाम का सहारा लगा लिया, जिसमें ऐश्वर्य की कोई जरूरत नहीं, चलते फिरते खाते बैठते उठते बैठते हरिनाम करो, भगवान की इन लीला कथाओं को जितना सुनेगा उस नाम में रुचि होगी, वो आगे बढ़ेगा, दिन रात उसी की चिंता करो, उन्हीं की चिंता करो, काम करो और सब, किंतु चिंता करो क्या, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, इसकी चिंता करो। ऊपर से सब लोग समझ रहे हो कि ये घर का काम सब ठीक कर रहा है, बाहर के साथ मिल रहा है, हंस करके बात कर रहा है, किंतु भीतर भीतर में सब कुछ उल्टा चल रहा है। इस प्रकार से साधन के लिए उन्होंने बतलाया है, अब दूसरे दिन बतलाएंगे, एक घंटा हो गया आपका।
अरे ये संस्कृत में लिखी हुई है ये किताब, संस्कृत में है
ये, यहाँ पर लिखी है
सब उलट पलट हो
गया।
सुनने चेष्टा भी दिखलाया, चेष्टा कर रहे हैं सुलहनामा के लिए, गए दुर्योधन से हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, किंतु आखिर वही हुआ जो होगा,
वो तो भगवान चाहते थे, नहीं चाहते
भगवान चाहे न चाहे, काल शक्ति तो चाहता, तो काल शक्ति
कौन है,
काल शक्ति काल शक्ति तो भगवान ही है, वही सब चाहते थे युद्ध,
वो जगत को के ऊपर में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्ट वो नहीं करते, उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार की ये सब चीजें हैं, उनके द्वारा ये सब अपने आप ये कंट्रोल और जो कुछ करना है ये सब होता है, उस पर दखलदाजी नहीं करते, विशेष स्थिति में देखते सब कुछ ऑटोमेटिक रूप में चलता है, इसका भी इसके लिए कुछ लाभ भी होगा, ऐसा हम तो ऊपर से देख रहे हैं इसको, भीतर में क्या चीज है नहीं अनुमान कर। अच्छा कितने आदमी मारे गए,
2600
कह रहे हैं,
हाँ जी 2600 कह रहे हैं, 3000 हो गए, चलो
तो हम लोगों की दृष्टि में एक आदमी भी नहीं मरा, ये सत्य है कि झूठ है,
हाँ, वो तो सत्य है
3000 बता रहे हैं,
किंतु एक भी जीव मरा,
जी
तो शरीर का तो रूपांतर हुआ, ये बात ठीक है,
हाँ।
हाँ जी, कनाडा से नारद मुनि है हमारे।
भता ही एक तरह से चौपट हो गई। वो विद्या जिससे कि मंत्र पूछ करके बांध चलाते थे और आग लग जाती थी, हजारों मील का दूर का आदमी को निशाना मान करके मारते और देश का देश एकदम जला करके खाक कर देते, वो सब बरसा हो जाए धनुष बाण से, ये सब विद्याएं थे। वो भी करीब करीब लुप्त हो गई। लाभ क्या हुआ? महाभारत जिससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं?
गीता उपदेश एक तो मिला।
क्या लाभ है बताइए? भौतिक रूप में सब धन हुआ, किंतु परमार्थिक रूप में ये बड़ा लाभ हुआ है। जितने नास्तिक थे, धर्म के विरोधी थे, धर्म कर्म कुछ नहीं मानते थे, अश्रुत विचार के लोग हो गए थे, उन लोगों को कृष्ण ने चलाकी चतुराशी से उनको हटा करके, बल्कि उनको क्या किया, उनको मरवा करके मार करके और उनको मुक्ति दे दी। अब इस जगत में तुम लोगों का जन्म नहीं होगा जो बदमाशी करेगा, धर्म का विरोध करेगा।
अच्छा।
उनको मुक्ति दे दी। हाँ। देखिए, उनका भी कल्याण कर दिया। और जगत में ये जो रहते वो लोग दुर्योधन शकुनी कर्ण दुशासन,
हाँ,
तो ये सब भगवान का विरोधी बात पर धर्म नष्ट हो जाता है, गीता का उपदेश नहीं आता,
विध्वंस से फायदा हो गया।
ये परमार्थी के एक लाभ संसार के लिए वो देते, नहीं तो वो लोग कुछ दिनों के बाद में कृष्ण नहीं रहने पर जगत का और भी विध्वंस कर। इस तरह से कुछ भौतिक हानि होने पर भी परमार्थिक लाभ बहुत हुआ। मैं तो सब कुछ माँ भारत इत्यादि का जो था विचार प्रदेश अच्छे बुरे का,
इसमें क्या लाभ होगा? जो भूकंप आया,
कर्ण को दुर्योधन को दंड नहीं मिला होता तो वो सब लोग ऐसे लोग पनपते होता कि नहीं? तो क्या होता, धर्म का विध्वंस ये सब हो जाता। हम लोग आज पढ़ सुन रहे हैं, ये नहीं होती।
चादर मंगवा लो
दीपक, चादर
मारती कुछ नहीं होगा।
क्या लाभ मरेगा?
जीव तो मरेगा नहीं।
हाँ जी, ये तो ठीक है।
25,000 या 2500 आदमी या जो कुछ
हो, हाँ जी,
उनका शरीर का रूपांतर हो गया। अच्छा, वैभव क्या नष्ट हुआ? क्या वैभव नष्ट क्या हुआ?
पुल, रेलगाड़ी और मकान।
क्या हुआ इस
मिट्टी
में? मिट्टी से निकला था वो लोहा लक्कड़, फिर उसमें मिल गया। दो तीन और रंग बने
जो फाइव एलिमेंट
मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हाँ कार्ड ये हो
गया।
एक कण भी नष्ट न हुआ, किंतु स्थूल वादियों के लिए सभी कुछ
बहुत नुकसान हुआ, इतने मिलियन डॉलर का।
लेकिन महाभारत फिर मिलियन डॉलर
मतलब वो जो
हुआ उसके बाद दिल्ली की गति पर, और उन्होंने सारे भारत बस में ब्रजमंडल को जो लुप्त हो गया था उसको फिर से बचाया। श्रीमद भागवत का प्रचार हुआ देश विदेश में।
रख लो कोई और आ जाए।
इस तरह से बहुत बड़ा भारी लाभ हुआ। ये प्रलय होता है, ये क्या प्रलय है? ये तो अभी आंशिक प्रलय भी नहीं है, ऐसा प्रलय होगा, ऐसा वर्णन है। ये सारा भूमंडल क्या ब्रह्मांड एकदम चौपट हो जाएगा, सब जल करके खाक हो जाएगा और सब पानी हो जाएगा। पानी के बाद में पानी भी हट करके केवल मात्र हवा रहेगी, हवा भी उसमें से डाइल्यूशन होकर के किस प्रकार से एकदम आकाश के शून्य के रूप में बदल जाएगा। और ये आकाश भी नहीं रहेगा, प्रकृति एकदम रहेगी शून्य। और इसको ब्रह्मा लेकर के गर्भदशाई के अंदर में चले जाएगा, सारी सृष्टि एकदम विलुप्त हो जाएगी। किंतु नष्ट क्या हुआ?
नष्ट नहीं,
इसको उपमा दे रहे हैं,
लीन हो जाते,
इसको उपमा दे रहे हैं। एक किसान ने खेती की, खेती करने के बाद में उसमें बीज डाला, गेहूं, काफी दूर तक खेती हुई, खेत लहलहाने लग गया, चारों तरफ में हरियाली हो गई, ये सब को बड़ा आनंद हुआ। अब उसकी चौकसी देने लगा चौकीदारी, ये कोई गाय चर न जाए, और चारों तरफ से उसकी लिहत बंदी कर दी, कांटे लगा दिए, अब धीरे धीरे उसमें जबकि बाल निकल आई और जब लहलहाने लगी कि उसका हृदय एकदम और फट गया, और जब उसकी बालें पकी और उसमें गेहूं के दाने एकदम पुष्ट हो गए, तब क्या किया, जल्दी से चारों तरफ से मंच लगा करके उसकी रक्षा जी पूरा पुष्ट हो गया। जब पूरा पुष्ट हो गया तो जिस खेत को उसने बोया था और उनको रक्षा की थी, अब हसिया लेकर के काटने लगा निष्ठुर होकर, काटना चाहिए इस वृक्ष को लगाया और उसी को काट रहा, काट लिया
गेहूं,
काट करके गेहूं को उझाड़ा,
गेहूं चाहिए इसीलिए तो काटा उसने,
अब काटा सुनो तो काट तो दिया और काट करके उसको दाने उसको किसी प्रकार से मशीन से हो बैलों से हो जैसे उसको निकाले,
कूट कूट के निकाले ऐसे भी नहीं,
और वो कहाँ रखेगा वो भूसा और ये सब उनको जला करके जला कर दिया और उसको घर में रख दिया और उसमें से जो जरूरत थी उसको खाया और बाकी को रख दिया
बीज,
और दूसरे साल में थोड़ा सा दिया और पूरा पूरा कापूस भर गया, क्या खत्म हुआ क्या नष्ट हुआ, यदि वो खेत को नहीं काटता तो क्या होता, इसलिए महाभारत युद्ध नहीं हो ये प्रलय न हो, प्रलय होने पर भी जीव नहीं कोई मरता, जीव अपने शुद्ध स्वरूप में रह करके ब्रह्मा जी के शरीर में रह करके प्रभु के साथ में मिल जाता है, और फिर जब इच्छा होती है प्रभु की उन बीजों को उसमें से निकाल करके और जगत के रूप में लेकर के पुरुष स्त्री पशु पक्षी की पतंग पेड़ पौधे ये सब कुछ फिर अब जैसा करता है रूपांतर होता रहता है, जीव कहीं नष्ट नहीं होता, अजर अमर है भगवान की तरह, केवल ये सब खेती होती है। अतः भगवान से जो भूले हुए हैं जीव हमारे जैसे जैसे और इसमें एकदम मस्त है, उनको ठोकर देने के लिए ये सब दुख, ठोकर देने के लिए मरेगा तो कोई नहीं तो ठोकर देने के लिए ये चेतो, इसमें सुख नहीं है, धर्म के पथ पर रहो चलो, और यही सर्वस्व नहीं है, एक दिन हम इसको ध्वंस कर देंगे, ये काना कौड़ी के बराबर इसका मूल्य नहीं है, प्रेम की शिक्षा करो, घर वालों से पहले प्रेम करो, पहले प्रेम किसे करो, माता पिता से प्रेम करो, जिसने जन्म दिया वो तुम्हारे लिए वही भगवान है, यही तो पहले शिक्षा, माता पिता ही गुरु है पहले, उनको कदर करना सीखो, आदर करना सीखो, प्रेम करना सीखो, फिर पत्नी से उसके पति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसमें प्रेम को प्रधान रख करके काम और भोग प्रधान मत रखो, यदि काम और किया तो ध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निरस हो जाएगा, इसलिए खूब सोच समझ करके प्रेम करो, काम अन्य अंधे न हो, इसके बाद में पास के पड़ोसी जो है सबसे प्रेम रखो, सब में भगवान है, और फिर उसके बाद में तब भगवान किसी को भेज करके अपने विशेष रूप, देखो सब में भगवान है किंतु फिर भी भगवान की सत्ता एक पृथक रूप में भी है, सब में भगवान है ये ठीक है किंतु सभी भगवान नहीं है, सब लोटों में पानी है एक किंतु सब लोटा एक नहीं है, समुद्र में लोटे को डुबा दो ऊपर से दिखेगा सब पानी किंतु लोटा भी पानी नहीं हो जाएगा, उसी प्रकार से जो जीव है वो जीव ही रहेंगे, वो भगवान कभी नहीं होंगे या ये कभी नष्ट भी नहीं होंगे, बस भगवान के साथ में वही जो प्रेम जो पहले माता पिता के प्रति था, स्त्री के प्रति था, बाल बच्चों के प्रति था, संसारिक वस्तुओं के प्रति जो प्रेम तुम्हारा था, अब उसको शुद्ध करके यदि लगाए तो ये लोग भी सुखी रहेंगे तुम भी सुखी रहेंगे, और यदि भगवान के प्रति तुमने प्रेम नहीं किया और इन्हीं लोगों में रहा है तो ये भी ध्वंस हो जाएंगे, तुम भी ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ कहने की है
फिर जापान हो जाएंगे,
अभी तो क्या वो हिरोशिमा या कि हिरोशिमा से भी और अधिक हुआ था, क्या
हुआ
अब देखा ना, एक दो महीने का बाद में फिर नया बन
जाएगा,
किसी का कुछ जो मर गए तो मर गए जन्म लेंगे, जो जो बच गए हैं वो फिर वैसे संपत्ति जो हम वहाँ पर करने में अधिक दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से उसको ठीक कर
लेंगे, उनमें से कोई समझ पाएगा कि हाँ ये तो नाशवान चीजें थी भगवान की भक्ति करने
वाला,
तो कोई समझ पाएगा इस बात को,
घर से एक ऐसा है
हाँ जी
जिसमें ये सब सांत्वना और ये सब
ज्ञान
है और कहीं नहीं है,
कहाँ पर है भारत,
भारतवर्ष, यहाँ का विचार यदि कुछ कुछ है तो सांत्वना दे सकता है और कहीं नहीं है, हम लोग को जा सकते आगे पीछे में कहीं नहीं,
नहीं सहनशील भी बहुत ज्यादा हम लोग,
वो लोग समाज की सेवा करने वाले बहुत सारे घर बार छोड़ करके करते हैं,
सहनशील का भी है हम लोगों
का। ये पादरी लोग इस क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं किंतु उसे पे लेकर हमको कोई पे देता है, हम अपने सिद्धांत पर विचारों पर एकदम दृढ़ होकर के अनुभूति करके इसके क्षेत्र में उतरे। हम आप लोगों से प्यार करने के लिए, स्नेह करने के लिए, या आप लोगों से कोई चीज लेने के लिए, या कोई भौतिक चीज देने के लिए, लेने के लिए नहीं, एक दृढ़ विश्वास के साथ में सबको लेकर के भगवान के चरणों में, बस एक यही उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य ऐसा उन लोगों में नहीं है, पादरियों में और ये सब
नहीं।
हम लोग कहेंगे भगवान से ये प्रार्थना मत करो ये प्रभु हमको रोटी और रोटी दे,
ब्रेड,
ये तो तुम्हारे कर्म से मिलेगा, वो क्या
कहना,
हम लोग प्रभु को इसके लिए कष्ट नहीं दे, हम ब्रेड और बैटर प्रभु को देंगे, तुम ये खाओ। हमारा
मांगेंगे उनको देंगे,
इसलिए संसारिक चीज कोई नष्ट भी हो जाए उसके लिए चिंता करने की कोई जब हमारा कुछ भी नहीं गया, कोई यदि भक्ति हानि हुई प्रभु के प्रति जो प्रीति है, हमारे शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है, ये यदि टूटी तो सभी कुछ गया और बाकी कुछ नहीं गया, उसको तो हम लोग छोड़ करके आए, देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी को देखो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बाघ भालू सबको नचाते हुए हरि नाम देते हुए छोड़ करते जाते, विष्णु प्रिया जी को देखा है,
सुना है,
कैसा प्यार, अभी छोटी सी लड़की उसको छोड़ करके चले गंगा में टूट गए, हमारे बाद में हमारी स्त्री क्या खाएगी, मैया कहाँ रहेगी, क्या करेगी, देखो इस ब्रह्मांड का पालन करने वाले जो है इसी को केवल छोड़ करके बाकी सबको करेंगे, इस मैया को नहीं करेंगे, इसलिए आत्मविश्वास कर। द्रौपदी पांचों पतियों के साथ में जब राज्य को छोड़ करके हार गए, सब कुछ छोड़, कितना बड़ा भारी इनके प्रस्थ का वैभव छोड़ करके, कपड़े लगते तक भी उनके समय और छोड़ करके वन के तरफ में जा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति होगी बोलो तो, वो तो भगवत भक्त ही और ये भगवान भक्त ही, इसलिए कोई परवाह नहीं, हम लोग रहते तो देखते थे क्या, कभी भी कोई संसारिक कष्ट है उसको समझो, ये हमारे लिए विघ्न
है, सिखाने के लिए है, शिक्षा देने के
लिए नहीं, हमको आगे बढ़ाने के लिए है, यदि संसार में विघ्न बाधा न हो कोई आदमी उन्नत नहीं हो सकता है, मैं कल स्वामी जी की बात कर रहा था, श्री भक्ति वेदांत जी का, उन्होंने कलकत्ते में सबसे पहले युवावस्था में एक बंगाल केमिकल में मैनेजरी का पद लिया, मैनेजर बड़े ब्रिलियंट थे और कुछ दिनों में उसको चमका दिया, उसकी आमदनी चौगुनी पचगुनी करा दिया, अब उन्होंने सोचा जैसे अब मैं पृथक करके कोई केमिकल का कोई कुछ कारखाना आरम्भ, और उन्होंने आकर के इलाहाबाद में उसको छोड़ दिया और बड़ा बिजनेस बनाने के लिए वहां पर था, और इसी बीच में प्रभुपाद जी से भेंट हो गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने मंत्र लिया, दीक्षा हुई, इसके बाद में थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने कहा था कि अंग्रेजी में अंग्रेजी में कोई प्रबंध लिखो, बैक टू गॉड है पीछे हुआ, पहले था
हारमोनियस,
प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसमें प्रबंध दो और इसका तुम प्रचार करो, तुमको हम एडिटर कर देते हैं और पाश्चात्य देशों में तुम प्रचार करो। उस समय में ये कह रहे थे जब मुझको बहुत डर लगा, मैं डर गया, भागवत का एक श्लोक उन्होंने देखा, जदाजस्य अनुग्रहणम्
हरिष्ये
तद्धनं, हरिष्ये हरण करूंगा, सनई
धीरे
धीरे धीरे, धनई धनई माने क्या,
धन
धन माने क्या, स्त्री धन, पुत्र धन, गोधन,
ये रुपया पैसे का धन, ये संसार में जिसको हम अपने मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, संसार जिसको मैं स्नेह करता हूँ, जिस पर इसको दया करता हूँ, क्योंकि इसका नाम संसार को भव सागर को पार करना है। समय से नहीं कहते प्रभु एक ही बार कर लो,
नहीं कर पाएंगे,
सहन नहीं कर पाएंगे,
इसलिए कभी कभी भर करके थोड़ा सा दे देते हैं। अच्छा अब मिला, अब मिला,
सुख के साथ दुख भी देते हैं,
और ले
देते हैं, सुख भी दे देते हैं,
और धीरे धीरे कुछ करते करते तो स्वामी जी कह रहे थे, हमसे कह रहे हैं अभी संन्यास नहीं लिए, अभी विचार चल रहा है, मैंने कहा जी संन्यास लीजिए, गुरु जी महाराज जी उस समय आगे उन्होंने कहा दीजिए संन्यास, और ये पूरे 94 वर्ष के कहे तुम संन्यास लेगा तो हम भी तुम्हारे साथ में, हम संन्यास
मुनि महाराज
जी, मुनि महाराज के 95 वर्ष की उम्र में
उनका स्वप्न भी आया था।
तो पीछे की बात रही, पहले तो सुनो ये प्रैक्टिकल क्या हुआ, तुम से कह रहे थे जी मैं डरता था ये क्या होगा, अरे ये हमारा ये सब कुछ हरण कर लेंगे, तो देखा जाए जब फैक्ट्री जब अलग से मेरे हमने किया, काफी उसमें लोगों को रखा और चलने लगा काम, किंतु कुछ दिनों में वो कारोबार हमारा ठप, मैं नहीं चला सकता, तो उसको मैंने बेच दिया, तो बेच दिया तो अब क्या करूं, तो एक मेडिकल की दुकान करूं, क्योंकि हमको मेडिकल की ज्ञान है, बस हमने जवाहरलाल के नेहरू के कोठी के पास ही में चौरास्ते पर हमने एक अच्छी सी दुकान, और दुकानों में दुकान दवाइयां और ये सब भर कर दी, सब एक दो बरस चली, और इसके बाद में बहुत चेष्टा करने पर भी
नहीं चली,
उस दुकान को भी बेच दिया, तो मैं एजेंसी करने लगा, एजेंसी लेकर के वहां पर दवा देना, दिल्ली में ले आना, लखनऊ में इधर ये करना, कुछ दिनों के बाद में वो भी सब खत्म हो गया, एक पैसे नहीं रहे थे क्या खाऊं, वो कह रहे थे हमसे, हम कहा जैसे मैं जो डर रहा था वही हुआ, मैं जो कोई काम हाथ में लेता हूँ ऐसा हमारा दुर्भाग्य, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, अब बिजनेस अब कुछ है नहीं जो मैं कर सकूं, उसी समय में असहाय होकर के मठ में आए, हमने कहा ये तो प्रभु की बड़ी आप पर कृपा हुई, आपकी स्त्री आपको प्यार करती है, आप तो नहीं, तो वो तो कहती है जैसे पैसा नहीं लाता ये अलग हो जाए तो बल्कि इसका भार हम लोगों को, बेटों ने कहा जैसे पिताजी अब तो कुछ कमाता नहीं है, कुछ देता नहीं है, तो क्या होगा, ये अलग ही रहे तो अच्छा चले जाए, आपको संसार वाले कौन चाहते हैं, आप तो कोई नहीं चाहते, तो आप किस लिए बैठे हैं बतलाइए, तो आप जल्दी से संन्यास लेकर के भगवान का भक्ति कीजिए, प्रचार कीजिए, देखिए जैसे ये वैभव तो आपके चरणों में लौटेगा, तो अब इसका उत्तर इसका मतलब है जैसे आप धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं, गुरु जी आए उनसे एक बार कहा गुरु जी की बात मान लिया, अब ये तय हुआ कि जैसे संन्यास लेंगे, बस विश्वरूप जी का जिस दिन फौल होता है कार्तिक महीने
पहले
उस समय में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में दिल्ली आए, और दिल्ली से ही वहां जाने की अमेरिका में व्यवस्था हुई, और कुछ दिनों में वह विश्व का वैभव जो लाख बार कारोबार करते उनके चरणों में डोल
नहीं आता, ठीक है,
बिना मांगे आया कि
नहीं,
करोड़ों करोड़ों नहीं,
और
प्रतिष्ठा घर में रहते तो उनको उनके पीठ पर सुख चलता, सुख चलत जानती है, पत्नी बिगड़ करके कभी आज कुछ ले आए नहीं, एक सुख मारा सुख देखा है कभी, और तुम लोग कहाँ से देखेगी सब मैं
तार तार को गही करे छोटे दही उड़ाए
छोटे को उड़ा देती है, तो उस सूप से मार दिया पति को, अरे उनका नाम सुना है तुकाराम का, तुकाराम जी धनी आदमी थे, भगवान का भजन करने लगे, धीरे धीरे सांसारिक चीजों के प्रति उदासीन हो गए, जैसे रामचंद्र जी हैं कार खड़ी कर दिया बाहर में, कार का दरवाजा खुला है
लगता ही नहीं ताला है, लगता ही नहीं,
लेकिन तो ख्याल नहीं है ना, और आराम के साथ में लुटाने वाले आए और निकाल करके ले तुकाराम जी का ऐसा ही घर में आने वाला सामान भी लोगों को दे देते, एक दिन उनके घर में खाने का भी नहीं रहा,
वाला है।
हम तो कहीं नहीं गए, हम तुमको लेकर के वृंदावन में बैठा लेंगे अपनी गोदी में,
वही मुझे लग रहा है
कोई चिन्ह
चिंता नहीं रहे कि दोनों हाथ से बांसुरी बजाना। तो वो तुकाराम जी दिन रात जहाँ मिलते कोई बस टोली लेकर के बैठ जाते और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। कुछ दिनों में ऐसी नौबत आई जिस घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं, गन्ना का खेत बोया था। तो घर खेत में गन्ना था, तो उसकी पत्नी ने कहा जैसे और कुछ तो ले नहीं आया तो ऐसा कर ये गन्ना मैं काट ले आती हूँ, पास ही है, कोई लज्जा की बात नहीं है, और ये गन्ने ले जाकर के वहाँ पर बेच देना बाजार में, और जो कुछ मिलेगा उसका चावल दाल या आटा ले आना, सब्जी और रसोई बने, तब तुम्हारे ठाकुर जी भी कुछ खाएंगे नहीं तो ये भी उपवास रहेंगे। अरे अच्छी बात है, ऐसी कर दो, मैं तो काटना नहीं जानता, तुम भी काट लाओ। तो उनकी स्त्री गई काट करके ले आई, ले करके उसको साफ सुथरा करके बैंडेज बांध दिया का जैसे सिर पर उठा दिया, ले जाओ बाजार में। तो गए तो पास ही में कुछ बच्चे खेल रहे थे बाजार के पहले ही, दे करके अरे मामू 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 ये हमको दे दो, हमको ले लो, बस खींचने लगे। तो उन्होंने काट काट करके सब बच्चों को, बस एक केवल बचा का जब इसको क्या बेचे। वहीं से गन्ना लेकर के आए, उनकी पत्नी तो पहले से जली गन्ने को बेच आए, बेच तो आए किंतु चावल और ये आटे की तो गठरी नहीं देख रही, वो खा गई। तो वो कुछ चुप रहे, इसके बाद में बोली अरे बतलाओ ना वो कहाँ गई गठरी, किसी को दे आए तो गठरी तो नहीं, वो तो मैं बच्चे लपक पड़े और मांगने लगे तो मैंने उनको बांट दिया, केवल यही बची, यही बची उनके हाथ से ले गए और पीठ पर मारा तो वो टूट गई बीच में, तो ये हंसने लगे तो और बिगड़ गई। तो तू हंस रहा है आज खाने के नहीं, तू नहीं चल रहा है सही चला है, जो होना सो तो हुआ, आप क्या करेगी। तो उन्होंने मारा तो इन्होंने दोनों दंडों को ले लिया, लेकर के देख ये हमको तोड़ना पड़ता, हमको कष्ट होता है, तो तुमने ही तोड़ दिया,
यही खा लेता
अब तुम ये खा लो। ये भगवान क्या जाने इसमें क्या समझते हैं। तो कोई चिंता मत,
परंपरा से है।
अरे विदुर जैसे भक्त को उनको बतलाओ ना, कहा राजा जो दुर्धन के द्वारा उनको निकलवा दिया। तो वो बोले अच्छा भाई हमको निकाल दिया तो मैं बहुत दिन से निकलना चाहता था, मेरे लिए तो अच्छा था। जो दुर्धन ने कहा इस बदमाश को यहाँ से जिस पत्ते में खाता उसी में छेदना था, और भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, पानी भी नहीं लिया, और उसी विदुरानी के यहाँ घर में जा करके मैं भूखा हूँ मुझको कुछ खिलाओ ऐसा कहीं नहीं कहते। बतलाओ तो विदुरानी की कैसी कैसी सौभाग्यवती हो, तुम्हारे घर में आए बोले तो मुझको बहुत भूख लगी है, आज तुम केले के छिलके हटाकर छिलका दे दो, और उसमें ये ध्यान नहीं कि क्या खाया जाता है, वो तो फेंक दिया और छिलके दे दो। और कृष्ण प्रेम में विद्रोह करके आंखों में आंसू आ गए, बोले द्वारका की रानियां जो देती हैं उसमें वो मिठास नहीं है जो इस छिलके में। उसके पति विदुर आए बोले क्या खिला रही है, बच्चे चुप रहो, कृष्ण मना कर, आज हमको वो आनंद आ रहा है, मुझे केले की जरूरत नहीं, मुझे और कोई खाद्य की कोई कमी नहीं, मैं भूखा नहीं, मैं प्रेम का भूखा, ये प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान इस प्रेम को सब कुछ चला जाएगा, प्रेम जाएगा ये नहीं जाने से, ये जाने से सभी
संसारी उसके बाद ये भी आवश्यक है कि भक्ति भी मिले, उसका भी स्वभाव
भगवान देख सुन करके विचार करता है, वो देखते हैं कि यदि इसमें फंस जाएगा तो उसको नहीं देंगे, तो फंसेगा नहीं तो उसको पांडवों जैसा विश्व ब्रह्मांड का बनता होगा। महाराज अम्बरीश ये राजा जनक उनको कैसी सुंदर लड़की दी, इतना बड़ा भारी राज्य दिया है, और जिसमें उनका तनिक भी मोह नहीं है, घर में आग लग रही है और वो जैसे के तैसे ऐसे सब वो समझते हैं कि इसका क्या मूल्य है। शंकर जी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, मुंड माला
खोपड़ी
और सुखी खोपड़ी और
सत्संग का राख लगा देते
हैं, राख लगाते हैं। ये संसार वैसा ही है, सब कुछ ऐसा राख और मूल्य वाला है। और संसार वाले जो कुछ चाहते हैं उनको
नहीं,
अपने नंगे रहेंगे, सांप की माला पहनेंगे, दूसरों को जो भी चाहेगा उसको, ये विषय विषय। किंतु इसकी एक चीज की सिफत है, किसी चीज में अर्थ में दोष नहीं है, स्त्री में दोष नहीं है, पति में दोष नहीं है, बेटे में दोष नहीं है, धन में दोष नहीं है, व्यवहार के ऊपर में सब कुछ है। यदि उसका